पाकिस्तान का टाइम होगा 10 to 11 AM, ठीक है, सुबह का 10 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक, ये पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक होगा, और मिडल ईस्ट के टाइम के मुताबिक ये सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक, ठीक है। अच्छा, और मंडे को ये क्लास होती है, जदाकुम क्लास शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लजीन इस्तफा, अम्मा बाद, फाऊजु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर, قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما। तो इस खुतबे और इस दुआओं के साथ हम आज का दरस कुरान शुरू करते हैं, जो सूरह अनआम की आयात नंबर 103 से लेके 107 पर मुश्तमिल है, 103 to 107 सूरह अनआम। और इसके लिए जो हम किताब इस्तेमाल करते हैं वो मआरिफुल कुरान, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब दी हुई किताब मआरिफुल कुरान है, और उसकी भी जिल्द नंबर 3, क्योंकि मआरिफुल कुरान कुल 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सूरह अनआम की जो आयात हैं इनके इनका हमने तर्जुमा पहले पढ़ लिया था, खुलासे तफसीर भी हो गई थी, और मारुफ मसाइल भी हम पढ़ना शुरू कर चुके थे। जुमे के दरस में हम मारुफ जो जुमे के दरस में भी हम यही सिलसिला चला रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम कुछ पढ़ लेते हैं, और बाकी जो है वो हम पीर की सुबह की क्लास में पढ़ते हैं। तो ये पीर सुबह को तजवीद की जो क्लास होती है, उसके बाद ये दरस कुरान की क्लास होती है, ये भी 45 मिनट्स होती है, वैसे तो 1 घंटे तक चल जाती है, लेकिन इसका टाइम यही है, 8:45 to 9:30 सऊदी अरब टाइम के मुताबिक। अच्छा, मारिफ और मसाइल जो थे आयात के, इनमें मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ये मसला बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला जो यहाँ फरमाते हैं ना, ला तुदरिकुहुल अबसार, कि नहीं पा सकती उनको उसको आंखें, यानी अल्लाह की जो मखलूक है उसकी मखलूक की जो आंखें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकती, नहीं पा सकती, उसका इहाता नहीं कर सकती, जबकि वो सबको देख सकता है, सब देखने वालों को देख सकता है। वो हुआ युद्रकुल अबसार। तो इसी के तहत बात चल रही थी कि अल्लाह ताला की जात जो है ये लामहदूद है, और हमारी आंखें जो हैं ये महदूद हैं, लिमिटेड हैं। तो एक महदूद चीज जो है वो लामहदूद चीज को कैसे कंप्लीटली कवर कर सकती है, कैसे जो है वो देख सकती है। इसी डिस्कशन के अंदर जो सफा नंबर 410 के ऊपर मारुफ मसाइल लिखे हैं, तो उसी के अंदर जो है वो फिर जुमे के दर्स में अल्लाह ताला की कुर्सी और अल्लाह ताला के अर्श के बारे में जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी कवर हुआ था, कि जो सहरा की और अंगूठी की मिसाल से नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू जर गफारी रतान को समझाया कि अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है, ठीक है, और फिर अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, कि अगर पहले तो फरमाया ना कि अगर एक सहरा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, और उसके अंदर एक अंगूठी पड़ी हुई हो, तो जितने जमीन और आसमान हैं, जितने आसमान और जमीन हैं, तो उसकी मिसाल बस उस अंगूठी के जितनी है, और अल्लाह की कुर्सी जो है वो उस सहरा यानी उस डेजर्ट के माने, इतना बड़ा और पूरी जमीन और आसमान मिला करके उस एक छोटी सी अंगूठी के बराबर, ठीक है, तो कुर्सी इतनी बड़ी है। फिर आगे भी फरमा दिया कि अल्लाह का अर्श है ना, वो उससे भी इतना ही ज्यादा बड़ा है जितना कि अल्लाह की कुर्सी आसमान और जमीन से ज्यादा बड़ी है। तो अल्लाह का अर्श जो है वो सहरा के बराबर या सहरा की मानिंद है, और अल्लाह की कुर्सी जो है वो सिर्फ एक सहरा में पड़ी हुई अंगूठी की मानिंद है। ठीक है, तो अब अल्लाह की जात कितनी बड़ी है इसका तो हम तस्वुर ही नहीं कर, हम तो कुर्सी का तस्वुर, हम तो जमीन और आसमान का तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी, फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श। तो भाई हमारी आंखें अल्लाह ताला को नहीं देख सकती। उसमें फिर मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाकया इरशाद फरमा दिया था कि जब उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त करी कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते। फिर कयामत के दिन की बात हुई थी और बहुत ही अहम बात हुई थी कि कुफार मुनकरीन कयामत के रोज भी सजा के तौर पर अल्लाह ताला की रोयत से मुशर्रफ ना होंगे, यानी उनको ये सजा मिलेगी कि वो अपने रब को नहीं देख सकते। और उसके ऊपर अगर आपको याद हो कि साजिश ने एक मिसाल से बात समझाई थी कि कोई मुझसे कहे कि तुम्हें सजा मिली है कि तुम स्विट्जरलैंड नहीं देख सकते, तो मैं उसको ये कहूंगा कि भाई मैं स्विट्जरलैंड देखना ही नहीं चाहता, तो स्विट्जरलैंड ना दिखा करके मुझे तुम कौन सी सजा दे रहे हो। ठीक है ना, मैं तो देखना ही नहीं चाहता। तो इसी तरीके से एक कुफार को ये कौन सी सजा, क्योंकि कुफार को तो हम ये समझते हैं ना कि कुफार तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, हम तो ये समझते हैं ना कुफार अल्लाह को नहीं मानते और कुफार के दिल में तो अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है, कुफार के दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत होती है, कुफार भी अल्लाह को मानते हैं, काफिर नॉन मुस्लिम्स वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह ताला की मोहब्बत उनके अंदर भी होती है। उनको कयामत के दिन सजा के तौर पर अल्लाह ताला के दीदार से महरूम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो अल्लाह को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिसको जिस चीज से मोहब्बत नहीं होती वो उसको नहीं देखना चाहता, तो फिर सदा कैसी। ठीक है, तो बात यहां से फिर क्या बनी थी, क्या इससे नतीजा अखज किया था, वो आप बता दें, ताकि इस क्लास की जो एक खास फॉर्मेट है सवाल जवाब वाला फॉर्मेट, ठीक है, तो उससे भी हम फायदा उठा लें। जुम्मे के दर्स में तो ऐसा सवाल जवाब वाला सिलसिला नहीं होता ना, वो तो फिर बाद में होता है जब निजी मजलिस में लोग बैठते हैं तो उसमें सवाल जवाब होते हैं, खवातीन की साइड पर भी हो रहे होते हैं और मर्दों की साइड पर अलग हो रहे होते हैं, तो वहां पर बयान के दौरान तो सवाल जवाब नहीं हो सकते, लेकिन इस क्लास में तो हो सकते हैं ना। ठीक है, चैट विंडो जूम के अंदर जो है उसका हम यूज करते हैं सवाल के लिए जवाब के लिए। तो हमने सवाल आपसे ये किया कि इससे हमने क्या नतीजा अखज किया, एक कुफार के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है लेकिन उनको सजा मिलेगी कयामत के दिन कि उनको अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा। कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौम इज़िन लमहजूबून, इस आयत से यही पता चलता है ना कि उस दिन कयामत के दिन वो अपने रब से हिजाब में होंगे, यानी वो अपने रब को नहीं देख सके होंगे। ये होता है हिजाब, सर पे पहनने वाले स्कार्फ को हिजाब नहीं कहते। ठीक है, सर पे पहनने वाला जो स्कार्फ होता है ना वो हिजाब नहीं होता, हिजाब या हिजाब वो नहीं होता। ठीक है, वो तो स्कार्फ होता है, हिजाब तो होता है जो कि दरमियान में रुकावट बन जाए, ठीक है, ना इधर वाला उधर देख सके ना उधर वाला इधर देख सके, इसको कहते हैं हिजाब, जिसको उर्दू में पर्दा कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी हिजाब में होंगे और ये कुफार हिजाब के दूसरी तरफ होंगे, ना इधर वाले ना मतलब अल्लाह ताला इधर देख सकेंगे लेकिन ये तो उधर नहीं देख सकेंगे ना, अल्लाह ताला तो हर जगह देख सकते हैं ना लेकिन ये उधर नहीं देख सकेंगे, अल्लाह की तरफ नहीं देख सकेंगे। तो इससे क्या नतीजा खस किया था, कोई अगर आप में से बता दे थोड़ा बहुत लिख करके यहाँ पर, इससे क्या नतीजा खस किया था, कुफार के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी लेकिन कयामत के दिन वो अल्लाह से हिजाब में होंगे, उनको सजा मिलेगी। भाई जब मोहब्बत है तो फिर सजा कैसी, मोहब्बत वालों को तो सजा नहीं दी जाती। जी तो फिर क्यों सजा दी जाएगी काफिर को, ताकि हम अपने लिए इबरत पकड़ें, अपने लिए राह हिदायत इससे हासिल करें। अगर हमने बात को समझा ही नहीं तो फिर हमें क्या फायदा हुआ ये पढ़ करके। जी एनीवन मोहब्बत तो थी लेकिन अहकाम नहीं माने। बिल्कुल सही, ठीक है। मोहब्बत तो थी लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। दीन तो वही है जो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। दीन तो वही है जो अल्लाह का हुक्म है, ये नतीजा अखज़ किया है। लेकिन ये सवाल के जवाब से इतना फिट नहीं हो रहा, बल्कि पहला वाला जवाब ज्यादा फिट हो रहा है कि मोहब्बत तो थी लेकिन अहकाम नहीं माने। अहकाम मानना असल मोहब्बत है, बस दावा नहीं कह, दावा करना असल मोहब्बत नहीं होती, ठीक है। यानी उनके अंदर मोहब्बत थी लेकिन इस मोहब्बत का उनको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मोहब्बत तो अताअत का तकाजा करती है। मोहब्बत किस चीज का तकाजा करती है, किस चीज का डिमांड की डिमांड करती है? अताअत, ठीक है। तो अगर आप मोहब्बत जिससे है आपको, आप उसकी अताअत ही नहीं करते, तो फिर ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। जैसे शैतान, अब शैतान भी तो एक है ना, जिसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो भी तो जिन ही है ना, शैतान भी तो क्या है, जिन है। तो जिनों से भी तो यही तकाजा है ना इबादत का, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये तो नहीं फरमाया कि हमने सिर्फ इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, नहीं। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों दोनों को इबादत के लिए पैदा किया, यानी अताअत के लिए पैदा किया। तो शैतान भी तो जिन था ना, ठीक है ना, शैतान भी तो जिन है। काना मिनल जिन, सूरह कहफ की आयत है ना, काना मिनल जिन, वो जिन्नों में से था, ठीक है। तो अब उससे भी यही डिमांड थी ना कि तुम अताअत करो मेरी। अल्लाह ताला की डिमांड क्या थी? अताअत। लेकिन उसने अताअत नहीं करी, उसने अपनी मर्जी से सजदे किए, अपनी मर्जी से इबादतें करी, यानी अपने नफ्स की अताअत करी। अल्लाह ने जब कहा उसजुदू ले आदम, उसने इनकार कर दिया, ठीक है। तो अब उसके अंदर भी मोहब्बत थी, क्योंकि वो भी तो जिन्नात में से है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत थी, लेकिन उसने चूंकि इनकार कर दिया, बात मानने से, हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो उसकी इस मोहब्बत से इसको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसको रांदे दरगाह कर दिया गया, उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, और हमेशा हमेशा की जो है ना वो रुसवाई का ठहरा, ठीक, रुसवा ठहरा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये है असल बात। तो इस वजह से ना ये मोहब्बत के दावे, अल्लाह की मोहब्बत के दावे हो या अल्लाह की मोहब्बत में अगर आपको कुछ वो भी हो रही है अंदर अंदर कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ उठ रही हो अंदर, कैफियात उठ रही हैं आपके अंदर, बड़ी फीलिंग हो रही है दिल के अंदर, बड़ी अल्लाह की मोहब्बत की ठाठे मार रहा है आपका, ठीक है ना। आपका दिल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में ठाठे मार रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो मचल रहा है, मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में इलाही, लेकिन मैंने नमाज नहीं पढ़नी, राइट। मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में इलाही, लेकिन मैंने पर्दा नहीं करना, राइट, ठीक है ना। तो मेरा दिल मचल रहा है से फिर कोई फायदा नहीं है। आपका दिल बेशक मचलता रहे, लेकिन फिर उसके बाद होगा क्या उसके साथ? फिर उसको कुचल दिया जाएगा। मचलने का कोई फायदा नहीं, बल्कि फिर उसको सजा मिलेगी कुचलने की, ठीक है ना। दुनिया में भी उसकी उसकी कुचलन होगी और आखिरत में भी उसकी कुचलन होगी। तो ये मचलन से कोई फायदा नहीं है भाई। दिल अगर आपका मचल रहा है ना, तो फिर अताअत करके दिखाएं, बात मान के दिखाएं, ठीक है ना। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उन नेमतों का शुक्र अदा करके दिखाएं, ठीक है ना, और अल्लाह ताला की रजा में राजी होकर के दिखाएं, तब जो है ना वो आपकी मोहब्बत का आपको फायदा होगा, ठीक है। वरना गाने गाने से या नाते पढ़ने से या हम्दो सना की जो है वो अशार बयान करने से आपको फायदा नहीं होगा। ये मोहब्बत जो है ना, जो अल्लाह ताला ने बीज की शक्ल में आप में रखी है, ये मोहब्बत आपके अंदर बीज ही रहेगी, ये बीज से आगे नहीं बढ़ सकेगी। देखें एक और भी बात, अगर यहां तक बात समझ में आई, किसी को नहीं समझ में आई तो बता दें, ठीक है, किसी को यहां तक बात नहीं समझ में आई, कह क्या रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं आप, बता दीजिए भैया आप। मेरा दिल मचल रहा है, ये एक बड़ी अच्छी सी है जो कि हमारे हजरत भी बहुत पढ़ा करते थे, ठीक है ना, लेकिन अभी दिल में ये बात आई कि मेरा दिल मचल रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है अगर अल्लाह के हुक्म मानने का से इनकार किया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक बात अगर समझ में आ गई, दोबारा समझा, दोबारा समझा, इनको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई, उनको नहीं समझ में आई। भाई यही कह रहे थे ना कि मोहब्बत तो अताआत का तकाजा करती है ना, ठीक है ना। अब आपका बेटा है, ठीक है, आपका बेटा जो है ना वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो कहता है अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप बेटे से कहती हैं कि बेटा जरा फलाना काम तो कर देना, तो आपका बेटा कहे कि नहीं अम्मी काम वाम मैंने नहीं करना, मैंने आपसे खाली मोहब्बत करनी है, मैंने आपका बताया हुआ काम नहीं करना, मैंने आपके किसी बात पे जो है ना वो अमल नहीं करना, बल्कि मैंने तो इनकार ही कर देना, ठीक है। तो अब आपका जो बेटा है वो, उसकी मोहब्बत आपके किस काम की, या आपके बेटे को उसकी मोहब्बत क्या काम आएगी, ठीक है। तो क्योंकि मोहब्बत तो फिर अताअत से पता चलती है ना कि हाँ वाकई मोहब्बत है, और वो कहे जुबान से बोलता रहे मुझे बड़ी मोहब्बत है, मेरे दिल में बड़ी यानी वही मचल रहा है मेरे दिल आपकी मोहब्बत में अम्मी जान, ठीक है ना। लेकिन अम्मी जान जो है ना वो, अच्छा, चले ये तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा मुझे इतना अजीज है कि मैं जो हूं ना वो बेटे की इन बातों से मैं इफेक्ट नहीं होती, मैं बेटे से फिर भी मोहब्बत ही करती हूँ। लेकिन अगर आपका बेटा जो है ना वो, आप कर दें उसकी शादी, ठीक है ना, अभी जरा सिचुएशन थोड़ी सोचें अपने जहन में, थोड़ा सा इमेजिन करें, आपने अपने बेटे की कर दी शादी, ठीक है, अब शादी करने के बाद जो आप बहू लेकर के आई ना अपने घर में, सही है, तो अब जो है ना वो बहू जो है ना वो तो आपको ऐसे जो है ना वो फिर यानी छट्टी का दूध याद दिला रही है आपको, रात में दिन में तारे ना दिखा दिखा रही है आपकी बहू आपको, ठीक है ना, अच्छे से आपको जलील कर दिया आपकी बहू। अल्लाह ना करे आपके घर में ऐसा मामला हो, लेकिन मैं खाली मिसाल दे रहा हूँ, आपकी बहू करती है आपको अच्छी तरीके से जलील, आपको जो है ना आपकी कोई बात नहीं मानती, आपको जो है वो उल्टी सीधी बातें बोलती है और आपसे बड़ी सख्ती से बात करती है, ठीक है ना, आपकी बहू आपके साथ ये कर रही है, ठीक है ना। अब आप अपने बेटे को जरा बोलें कि बेटा तुम अपनी बेगम साहिबा को कुछ समझाओ, ये तो आपकी अम्मी के साथ क्या कर रही है, ठीक है ना, आप जरा अपने बेगम साहिबा को थोड़ा तमीज सिखाएं कि ये मेरे साथ क्या कर रही है, तो आपका बेटा कहे कि चुप हो जाए अम्मी जान, मेरे दिल में आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा मेरा दिल मचलता है आपकी मोहब्बत में, लेकिन मैंने बीवी के खिलाफ एक बात आप आपसे नहीं सुननी है, अब जरा बताएं फिर, ठीक है ना, अब जरा बताएं कि आपका क्या मामला होगा अपने बेटे के साथ, ठीक है ना। और उधर से बहू आपको जलील करे चले जा रही है, करे चले जा रही है, करे चले जा रही है, और जब आप बेटे से कोई बात कहें तो बेटा आपको जो है ना वो आगे से कहे नहीं अम्मी सॉरी, ये तो मैंने नहीं करना, ये तो मैं नहीं कर सकता सॉरी, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत शदीद मोहब्बत करता हूं, ठीक है। तो फिर उस वक्त आपकी मोहब्बत जो है ना वो फिर बेटे के लिए समझ में आ जाएगी आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा इससे भी बढ़ करके, इससे भी बढ़ करके, अभी तो बहू वाले बहू को बीच में लाया मतलब तब में आएगी मिलान के, इससे भी बढ़ करके अगर आपका बेटा आपसे ये कहे कि अम्मी मैं आपको अम्मी मानता ही नहीं हूं अपनी, ठीक है ना, मैं आपको अपनी अम्मी मानता ही नहीं हूं, मैं तो जो बराबर में आंटी रहती है ना मैं उनको अपनी अम्मी मानता हूं, ठीक है, मैं तो उनको अपनी अम्मी मानता हूँ जो बराबर में पड़ोस में आंटी रहती है, मैं आपको तो अपनी अम्मी मानता ही नहीं, फिर उसके बाद आपकी मोहब्बत, तो आप फिर यही चाहेंगे ना बेटा अपनी इन गलतियों से तौबा कर लो वापस आ जाओ, ठीक यानी ये भी एक मोहब्बत ही होगी ना आपके अंदर बेटे के लिए, कि आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल रही हैं, लेकिन आप उससे खुश भी नहीं हैं कि उसने एक तो बहू के सामने आपको जलील कर दिया, मजीद जलील कर दिया, तो अब आप उससे खुश तो नहीं हैं। और फिर उसके बाद इसने आपको अम्मी मानने से इनकार कर दिया, तो अब भी आप उससे और ज्यादा नाखुश हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपने उसको घर से नहीं निकाला, बल्कि आप यही उसे कहते, नहीं बेटा गलती गलती हो गई है तुमसे, ठीक है, मुझे समझ में आ रही है कि तुम्हारी ये बहुत ही कुछ, अब लेकिन तो अब तौबा कर लो इसे ना, माफ माफी मांग लो और मेरे बेटे बन जाओ, जैसे कि मैं तुम चाहती हूं तुम्हें वैसे तुम बेटा बन जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी, तो तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। तो ये भी तो आपकी मोहब्बत ही की वजह से आप उससे कह रही हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है जिससे कि समझाने की बात की जा रही है कि भाई काफिर जो होते हैं ना, ये काफिर ये सारे काम कर रहा होता है बेटे से भी बढ़ के, ठीक है, कि वो जो जलील करने वाले लोग होते हैं ना अल्लाह ताला के बारे में गंदी बातें करते हैं, कोई कहता है अल्लाह का बेटा है, कोई कहता है अल्लाह की बेटियां हैं, कोई कहता है अल्लाह ताला ये नहीं कर सकता, कोई कहता है अल्लाह ताला वो नहीं कर सकता, कोई कहता है अल्लाह ताला को जो है वो बात ही समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला जो है वो नौज बिल्ला जुल्म करता है ना, काफिर ये सारी बातें अल्लाह के बारे में कहते, या काफिर जो है वो इन बातों के करने वालों को अच्छा कह रहा होता है, जैसे बहू बहू आपको दलील कर रही है और बेटा साहब जो है वो बहू की तारीफें कर रहे हैं, उसी तरीके से कोई काफिर बड़ा जो जो उनके बड़े होते हैं ना, वो अल्लाह ताला को बिल्ला जलील और रसवा किस्म की बातें कह रहे हैं, और बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको अच्छा अच्छा कह रहे हैं, हाँ बहुत भी अच्छी बातें कर रहे हैं आप तो अल्लाह ताला के बारे में, ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर उनसे नाराज हो जाते हैं काफिर से, ठीक है, और दुनिया की जिंदगी तक उनको मोहलत देते हैं कि तुम अगर तौबा कर लोगे वापस आ जाओगे मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, ये सारी बदतमीजियां मैं तुम्हें तुम्हारी माफ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं करते तौबा, नहीं करते तौबा, नहीं करते तौबा, हत्ता के अल्लाह ताला ने एक टाइम सेट रखा हुआ है कि भाई मौत के बाद तौबा का दरवाजा बंद, ठीक है, तो जिसको मौत आ गई और उसने तौबा फिर भी नहीं करी तो फिर कयामत के दिन उसको सजा मिलेगी, ठीक है, तो अल्लाह के अहकामात जो है ना ये असल चीज है, बाकी आपकी दिल में कैफियत पैदा हो रही हो मोहब्बत की, या आप जो है वो नाते पढ़ रहे हो, या आप जो है वो जो भी पढ़ रहे हो, तो ये असल चीज नहीं है, असल चीज अल्लाह ताला के अहकामात है। अच्छा, और दूसरी बात ये कहनी थी कि मोहब्बत का सिलसिला भी अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कि हम खुद से पैदा नहीं कर सकते अपने अंदर, हम अपने अंदर खुद से पैदा नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, हम मोहब्बत को पैदा नहीं कर सकते ना, यानी मोहब्बत कि कोई वो नहीं है कि जी हम मसाला डालेंगे फिर उसके अंदर पानी डालेंगे मोहब्बत का तो फिर उससे जो है वो मोहब्बत हो जाएगी और फिर वो बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि मोहब्बत अल्लाह ताला ने अपने कंट्रोल में रखी है, और अल्लाह ताला ने हमारे कंट्रोल में क्या चीज दी है, अताअत, ठीक है, जब हम अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, ठीक है, जब हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं ना तब अल्लाह ताला मोहब्बत हमें अता फरमा, ठीक है, हम खुद से मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, ये मोहब्बत अल्लाह के देने की चीज, अल्लाह अल्लाह देते हैं ये, ठीक है ना, तो फिर हमने क्या करना है, हमने अल्लाह के हुक्मों को मानना, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह फरमाते हैं, कुल ए नबी अलैहिस्सलाम आपसे सुन से फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, ठीक है ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करो तो फिर क्या करो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, फत्तबिउनी, तो तुम मेरी इत्तबा करना शुरू कर दो, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा, तुम नबी की इत्तबा शुरू कर दो। क्या मतलब? कि नबी जो तुम्हें हुक्म दे रही हैं वो चूंकि अल्लाह का हुक्म है ना, तो तुम उन हुक्मों की अताअत शुरू कर दो। फत्तबिउनी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, युहबिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तुम नबी की अताअत शुरू कर दो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे तो फिर क्या होगा, वो युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहू। ठीक है, कि अल्लाह ने जब इनसे मोहब्बत करी युहिब्बूनहू, तो इसके नतीजे में इनके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना लें अगर आप अपने सामने, फ्लो चार्ट के भाई पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या हो। ठीक है, तो अगर पहले ये होता है कि हमारे दिल में तलब होती है अपने परवरदिगार से मोहब्बत करने की, भाई आपके आपको दिल चाह रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, लेकिन आप कर नहीं सकते अल्लाह से मोहब्बत, लेकिन अभी आपका एक डिजायर है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मेरे नबी की अताअत करो, यानी नबी जो करते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है। ठीक है, नबी अल्लाह के हुक्म पहुंचाने के लिए दुनिया में आए, तो तुम उनके हुक्म को मानना शुरू कर दो तो फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे तो तुम्हारे अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ये है, ये इसके इसको तो आप बाईपास नहीं कर सकते कि नहीं बस मैं चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करूं तो मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़नी शुरू हो गई, दरमियान में जो स्टेप था उसको मैं स्किप कर दूंगा। दरमियान में स्टेप क्या था, फत्तबिउनी, अल्लाह के नबी की इत्तबा करना, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इत्तबा नहीं करना चाहता, मैं तो नाते पढ़ना चाहता हूं। ठीक है ना, या मैं और कोई इस किस्म की पठान किस्म की कोई चीज करना चाहता हूं, इत्तबा मैंने नहीं करनी अल्लाह के नबी की। तो जब तक आप ये दरमियान का स्टेप नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं आपके अंदर बढ़ेगी, वो वही रहेगी जो आप पैदाइश के वक्त लेकर के आए, जितनी मोहब्बत वो उतनी ही रहेगी, और इसी के साथ फिर आप मर जाएंगे, और फिर मरने के बाद कयामत के दिन उठाए जाएंगे, और फिर वो जो छोटी सी मोहब्बत होगी ना, उस मोहब्बत की बुनियाद पर आप चाहेंगे कि जब सब लोग अल्लाह को देख रहे हैं तो मैं क्यों नहीं देख रहा अल्लाह को, मुझे भी अल्लाह को देखना है, लेकिन उस दिन हिजाब बीच में डाल दिया जाएगा और अल्लाह को देखने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे फरमाया उन्होंने हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने कि आखिरत में हक तआला की जियारत मुख्तलिफ मकामात पर होगी, अरसाए महशर में भी होगी और जन्नत में पहुंचने के बाद भी होगी, और अहले जन्नत के लिए सारी नेमतों से बड़ी नेमत हक तआला की जियारत होगी। लेकिन काफिरों को किसी भी जगह पे अल्लाह ताला की ज़ियारत नहीं मिली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो हक ताला उनसे फरमाएंगे कि जो नेमतें जन्नत में तुम्हें मिल चुकी हैं उनसे जायद और कुछ चाहिए, तो बतलाओ कि हम वो भी तुम्हें दे दें। तो ये लोग अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, आपने हमें दोजख से निजात दे दी, जन्नत में दाखिल फरमा दिया, इससे ज्यादा हम और क्या चाहें। तो उस वक्त हिजाब दरमियान से उठा दिया जाएगा। ठीक है, यानी टेम्पोरारीली एक हिजाब इवन ईमान वालों और अल्लाह के दरमियान भी होगा, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन जब होगी ना, आवाज तो हिजाब से भी इधर उधर जाती है ना, राइट, तो आवाज तो नहीं रुकती हिजाब से, तो वो बातचीत तो चल रही होगी, तो उस वक्त हिजाब दरमियान से भी उठा दिया जाएगा और सबको अल्लाह ताला की ज़ियारत होगी और जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर ये नेमत होगी। यह हदीस सही मुस्लिम में हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन से मनकूल है। उन्होंने फ्लो चार्ट लिख करके यहाँ पे भेज दिया कि अल्लाह की तलब, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, फिर अल्लाह की मोहब्बत, फिर बंदे के दिल में अल्लाह की। लेकिन आपने जल्दी में लिखा है तो उसको पढ़ करके इतना समझ में किसी के नहीं आएगा शायद, लेकिन चलें ठीक है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उम्मीद है कि जिसने सुन करके बात समझ ली तो वो इसको पढ़ करके मुझे इसको समझ भी लेगा जब आप उनका कसीर। अच्छा, सही बुखारी की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात चांद की चांदनी में तशरीफ फरमा थे और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मजमा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नजर फरमाई और फिर फरमाया कि आखिरत में, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को ऐसी इसी तरह और यानन देखो तो जैसे इस चांद को देख रहे हो। और यानन का मतलब कि तुम्हारे रब के ऊपर कोई पर्दा नहीं होगा, ठीक है, या तुम्हारे और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा, बल्कि जिस तरह चांद और तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है ना, तुम चांद को देख सकते हो, उसी तरीके से तुम रब को भी देखोगे। क्या क्या मतलब? एक तो ये कि इसका मतलब कयामत के दिन की बात हो रही है, दुनिया की जिंदगी की बात नहीं हो रही। दूसरा ये कि अल्लाह और तुम्हारे दरमियान में जो पर्दा है ना, वो पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम उसको देख सकोगे जैसे तुम चांद को देख रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह तुम चांद को ऐसे देख रहे हो ना, जब हम चांद को देखते हैं तो चांद को हम पूरा का पूरा देख लेते हैं, ठीक है ना, और चांद की जो है वो बाकायदा बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज समझे, उसकी हद होती है ना उसकी, चांद की, भाई ये गोल सा चांद होता है और एक एंड ये खत्म हो जाता है चांद, उसके राइट पर चांदनी होता, लेफ्ट पे चांदनी होता, चांद के ऊपर मजीद चांदनी होता, चांद के नीचे मजीद चांदनी होता, बस चांद एक राउंड किस्म की चीज होती है, उसको आप पूरा का पूरा देख लेते हैं। तो क्या अल्लाह ताला भी ऐसे सामने नजर आएंगे कि हम पूरे के पूरे अल्लाह ताला को देख लेंगे? नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर फिगर है ना चांद की एक, तो अल्लाह ताला की पूरी फिगर को, पूरे के पूरे जिस्म को, एक होता है ना फिजिकल फॉर्म होती है किसी की, तो अल्लाह ताला को हम उसी तरह फिजिकली फॉर्म के अंदर देख लेंगे जैसे चांद को देख रहे हैं? नहीं, ये हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो चांद की तरह लिमिटेड चीज नहीं है। तो हम देख तो रहे होंगे लेकिन पूरा का पूरा नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त भी हमारी निगाहों के अंदर मुहित नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला गैर मुहित है और हमारी निगाहें उस वक्त भी गैर मुहित होंगी, लिमिटेड होंगी, लेकिन दरमियान में ही जा। तो फिर वही कोई सवाल करे कि भाई फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे क्यों फरमाया कि तुम जैसे चांद को देख रहे हो वैसे अल्लाह को देखोगे, तो भाई इसका मतलब खाली इतना है कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कहा जाए कि चांद की चांदनी को तो तुम देख सकते हो लेकिन तुम चांद को नहीं देख सकते, ठीक है, तो तुम चांदनी को देख करके समझना कि तुम गोया के चांद को देख रहे हो, नहीं, बल्कि तुम एक्चुअली चांद को देख रहे हो। चांद की चांदनी को देख करके तुम्हें गुमान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा चांद होगा क्योंकि उसकी चांदनी नजर आ रही है, नहीं, ये सब तो अल्लाह ताला के साथ कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दुनिया में ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की मखलूक को देख करके ये तसव्वुर करना होता है कि अल्लाह है जिसने इस मखलूक को बनाया है, खुद अल्लाह को हम नहीं देख सकते। जैसे कि चांद को अगर कोई ना देख सके तो उसको कहा जाए कि चलो तुम चांदनी को देख करके समझो कि चांद है, नहीं, बल्कि तुम एक्चुअली चांद को देख रहे हो ना, उसी तरह से तुम वाकई अल्लाह को ही देखोगे, अल्लाह की तजल्लियात को देख करके, तो बस तुमने तजल्लियात देखी ना, बस ठीक है, काफी है, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि तुम अल्लाह ही को देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन पूरा पूरा का पूरा नहीं देख पाओगे क्योंकि अल्लाह ताला तो गैर गैर महदूद है। अच्छा, अकाबरीन के मुताल्लिक जो कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह की जियारत, उनको अल्लाह की जियारत होती है, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब यही होता है कि एक तो वो ख्वाब में होते हैं, दुनिया में ये जागते हुए नहीं अल्लाह की ज़ियारत हो रही होती है, ठीक है, जागते हुए नहीं अल्लाह की ज़ियारत हो रही होती है, ख्वाब में होती है। तो ख्वाब में जब इंसान चला जाता है ना, तो उस वक्त जो है वो जिस्मानी दुनिया से वो आजाद हो जाता है, जिस्मानी दुनिया से वो बाहर चला जाता है, वो रूहानी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है, ख्वाब के अंदर, ठीक है। अब जब रूहानी दुनिया में पहुंच गया है तो इस दुनियावी, ये जो जिस्मानी दुनिया की जो लिमिटेशंस हैं वो उनसे भी आजाद हो गया, ठीक है ना। तो अब वो अल्लाह ताला की ज़ियारत कर रहे हैं, तो आलम कि वो अल्लाह ताला की तजल्ली की जियारत कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की जो है वो वजूद की जियारत कर रहे होते हैं, जैसे कयामत के अंदर कोई जियारत करेगा अल्लाह ताला के वजूद की जियारत करेगा कयामत के दिन, तो ख्वाब में भी क्या वो अल्लाह के वजूद की जियारत कर रहे होते हैं? नहीं, हमने तो यही सुना कि दुनिया के अंदर ना वो अल्लाह ताला की तजल्ली की जियारत कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ख्वाब में भी जियारत होती है ना तो अल्लाह की तजल्ली की जियारत हो रही होती है, ठीक है। और वैसे भी आप जो है वो जिस्मानी हदूद से आजाद होकर के फिर आप उसके ऊपर पहुंचे हुए होते हैं। अच्छा आगे, अच्छा इसको थोड़ा सा कवर आगे भी होगा कि तिर्मिजी और मुसनद अहमद के एक हदीस में बरवायत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला मनकूल है कि अल्लाह ताला जिन लोगों को जन्नत में खास दर्जा अता फरमाएंगे उनको रोजाना सुबह और शाम हक ताला की ज्यारत नसीब होगी। खास दर्जा किनको अता फरमाएंगे? जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत करी होगी ना, अल्लाह ताला के जो ममनू शुदा चीजें हैं उनको मोहब्बत की नजर से देखना, इससे अल्लाह ताला की गैरत होती है, अल्लाह ताला को गैरत आती है कि जिन चीजों को मैंने मना किया देखने से तुम उनको कैसे चाहत के साथ देख रहे हो, तुम उनको कैसे मोहब्बत के साथ देख रहे हो, ठीक है, या तो तुम उनको बिल्कुल भी ना देखो, बिल्कुल अपनी निगाहों की हिफाजत करो, उनकी तरफ तुम निगाहें डालो ही नहीं, ठीक है, या अगर तुम्हारी निगाह किसी भी वजह से उन पर पड़ भी गई ना तो वो मोहब्बत की निगाह नहीं होनी चाहिए, वो चाहत की निगाह नहीं होनी चाहिए, वो लॉन्गिंग की निगाह नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि तुम उसको उस गंदी चीज को उस नामहरम के चेहरे को उस जो है वो सतर किसी इंसान के सतर को तुम जो है ना वो ऐसे देख रहे हो कि जैसे यू रियली वॉन्ट, तुम जैसे चाहते हो ऐसी चीज को देख, ठीक है ना, तो ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया। तो जो इससे बचाएगा ना अपनी आंखों को तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको अपनी ज्यारत अता फरमाएंगे, ज्यादा ज्यादा ज्यारतें अता, ठीक है, और जिसने अपनी निगाह की हिफाजत नहीं करी होगी जन्नत में जाने से पहले वो गुनाह तो माफ हो गया होगा, गुनाह तो माफ हो गया होगा लेकिन जो अमाउंट ऑफ ज्यारतें हैं ना वो भी कम हो गई होंगी, जितनी वहां पे ज्यारतें मिलेंगी ना उनकी भी बस, या तो एक ही जिसने बहुत बदनजरी करी होगी लेकिन बिलाखिर तौबा वौबा करके अल्लाह ताला से माफी करवा ली तो जन्नत में तो दाखिल हो गया, ठीक है, लेकिन वहां पर फिर एक जो बेयर मिनिमम एक सिंगल ज्यारत है ना बस वही होगी, उसके आगे दोबारा नहीं होगी, बस एक ही ज्यारत, बाकी लोग जो है सुबह शाम ज्यारतें कर रहे होंगे इसको ज्यारतें नहीं हो रही होगी क्योंकि इसने दुनिया के अंदर अपनी निगाह की इबादत नहीं करी। तो ये फिर मशायत ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि इसका नजर की हिफाजत के साथ इसका प्रोपोर्शनेट होगा ये उससे, ठीक है, तो इस वजह से ना ये एक तो हमें खुद भी अपनी नजर की हिफाजत करनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने निगाह की हिफाजत का हुक्म सिर्फ मर्दों को तो नहीं दिया ना, सिर्फ ये तो नहीं फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तो ये मुमिनीन तो मर्द होते हैं लेकिन आगे अलग से फरमाया कुल लिल मुमिनाते यगुद्दना मिन अबसारिहिन, कि तुम कि आप कह दीजिए इन मुमिनात से भी कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत, वो भी अपनी निगाहों को झुकाएं, ठीक है, झुकाने का मतलब खाली नहीं होता कि बस जमीन को देखते रहें, बल्कि झुकाने का मतलब क्या है कि जिन चीजों को देखने से मना किया है ना उनको ना ना देखें, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो गैर महरम को देखना, सतर को देखना, ये सब आ जाता है, और दूसरा ये भी कि मोहब्बत की निगाह से जो है ना वो दुनिया की रेल पेल को भी ना देखे, ठीक है, यानी किसी के पास बड़ी अच्छी सी गाड़ी है तो अब गाड़ी को देखे चली जा रही है, किसी के पास जो है वो सोने चांदी के बड़े जेवर हैं तो अब जो है वो कहते हैं दीदे फाड़ फाड़ करके देखना, जिसको मुहावरतन कहा जाता है दीदे फाड़ फाड़ के, इसके इतने जेवर, ये इतना इतना ये इतना वो, और दिल में चाहत ये कि मेरे पास भी होता, मेरे पास भी होता, मेरे पास भी होता, ठीक है, तो इससे भी मना किया गया ना। तो दुनिया की मोहब्बत जिसकी वजह से ये होती है, ये निगाहों का डालना होता है जिसकी वजह से, तो उससे अल्लाह ताला को गैरत आती है, अल्लाह ताला ने मना किया उससे। ठीक है, अपनी जेब व जीनत के लिए जेवर का रखना जायज औरतों के लिए, ठीक है, सोना भी जायज है, चांदी भी जायज है, अपने जेब व जीनत के लिए रखें, शोहर के लिए जेब व जीनत करें। और जो है वो औरतों के इसमें जो है वो एक इसराफ के बगैर अपने अच्छा पहनना ओढ़ना वगैरह जो है वो करें, इसराफ कहते हैं फजूल खर्च, ठीक है, तो फजूल खर्ची के बगैर इन चीजों की अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। लेकिन दिल में जो है ना ये हर वक्त इस तरह से कि बस इन्हीं के बारे में सोचे चले जा रही हैं, और इन्हीं की जो है वो प्लानिंग करी चले जा रही हैं, और यही कि बस और होता और होता और होता, ठीक है, तो ये फिर जो है ना इंसान के दिल को बिल्कुल ही खराब करके रख देता है, और फिर वो अल्लाह ताला की ज़ियारत के काबिल नहीं रहता। तो फरमाते हैं कि खुलासा ये है कि दुनिया में किसी को हक तआला की ज़ियारत नहीं हो सकती, और आखिरत में सब अहले जन्नत को होगी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शबे मेराज में ज़ियारत हुई थी वो भी दर हकीकत आलम आखिरत ही की ज़ियारत, ठीक है। अब इसमें सहाबा के दरमियान वैसे तो इख्तलाफ है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने वाकई अल्लाह को देखा था या अल्लाह को नहीं देखा था, वहां पे अर्श के वहां पे सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाकर के जो आप से गए थे ना, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे, वहां पे जाकर के अल्लाह ताला को देखा था कि नहीं देखा था। लेकिन सहाबा में चूंकि ये है कि देखा था, ठीक है, एक ग्रुप जो है वो देखा कि का कायल है, तो उसी की बुनियाद पर हजरत ने यहाँ पे लिखा कि जो शबे मेराज में अल्लाह की ज़ियारत नबी अलैहिस्सलाम को हुई थी ना, वो भी दर हकीकत आलम आखिरत ही की ज़ियारत है। क्यों? जैसे कि हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया जो है ना वो सिर्फ इस जहान का नाम है जो आसमानों के अंदर महसूर है, ठीक है। अब दुनिया की ये थोड़ी तफसील जो है वो फिर जुमे के दर्स के अंदर हुई थी कि भाई किस तरह से बनता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो आसमानों के विदिन जो महसूर है ना, इसको दुनिया कहते हैं, आसमानों से ऊपर आखिरत का मुकाम है, ठीक है, यानी क्योंकि सातवां आसमान खत्म हो जाता है ना, तो सातवें आसमान के ऊपर फिर क्या है, जन्नत है, सिदरतुल मुंतहा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है फिर पानी भी है, फिर उसके ऊपर जो है वो अर्श है और कुर्सी है और ये सब कुछ, ठीक है, तो वो आखिरत का मुकाम है। वहां पहुंचकर जो जियारत हुई नबी अलैहिस्सलाम को, तो उसको दुनिया की जियारत कहा ही नहीं जा सकती, ठीक है। क्या लिखें कि क्या अब भी तौबा कर लें तो अल्लाह से अच्छा गुमान रख सकते हैं? क्या अब भी तौबा करें? भैया तौबा कर लेना तो अल्लाह ताला आपको दिखा देंगे, आपको करना कहें, और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे बैठ के कोई आपको टिकट को थोड़ी देना है, ज्यारत के टिकट है भाई, क्या हमें इतने पैसे दें तो हम आपको इतने टिकट दे देंगे, अल्लाह ताला की इतनी ज्यारतें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये तो सारा अल्लाह ने करना है ना, तो आप करें, हमने तो जो सुना था अपने मशाइख से आपको बता दिया, अब अल्लाह से करें, तौबा भी अल्लाह ही से करें, और अल्लाह से गुमान भी अल्लाह ही से रखें, अल्लाह ताला से दुआएं भी अल्लाह ही से मांगे, ठीक है ना, हम बैठे यहाँ पे टिकट असाइन नहीं कर रहे हैं आपको। अच्छा, अब सवाल ये रहता है कि जब आयत कुरान ला तुदरिकुहुल अबसार से मालूम हुआ, अच्छा यहाँ पे जो बात मैंने ये कही भी थी ना, ठीक है, वो कही भी एक वजह से थी असल में, वो वजह भी आपको बता देते हैं, अच्छा वो आपकी बात से जो है वो वजह याद आ गई कि आपको कहा क्यों था ये वाली बात। आपको इसलिए कहा था कि भाई आप तो होंगी कोई कम अज कम 30 साल, 40 साल, 50 साल, ठीक है ना, तो जितनी बदनजरियां हो चुकी तो अब वो तो हो चुकी ना, ठीक है, अब जो भी आगे होगा उसके मुताबिक अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होगा, लेकिन औलाद, ठीक है, क्योंकि माएं हैं ना ज्यादातर यहाँ पर, तो औलाद को जो है ना फिर निगाहों की हिफाजत सिखाना, ठीक है, कि भाई बच्चा मैंने तो अपनी जिंदगी गंवा दी, और अब मैं तो पता नहीं मुझे अल्लाह की ज़ियारत कितनी मिलेगी, लेकिन आप जो है ना वो ना करें, ठीक है, तो औलाद की इस तरह से जब परवरिश की जाती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो फिर अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, ठीक है, करते हैं। वो जो चीज आती है ना फिर सामने, हत्ता के इवन कोई चीज बाकी सब मिलकर दे, जैसे के ऊपर कुछ होता है कि भाई आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होती है, ऑनलाइन जो है वो ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे होते हैं ताकि जो है वो बाजार के चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है ना। अब वो ग्रोसरी ऑर्डरिंग हो रही है तो उसके अंदर कोई ऐड आ गया, तो बच्चे जो है ना वो फौरन अपनी निगाह निगाह डाल लेते हैं वहां से, फौरन जो है ना वो अपने आंखों के आगे वो तो हाथ रख लिया या तो देखना ही छोड़ दिया उस तक। भाई ये कहाँ से आया बच्चों के अंदर, ये माँ बाप की तरबियत होती है, वो माँ बाप को ऐसा करते हुए देखते हैं ना वो खुद भी ऐसे ही करना शुरू कर देते, ठीक है। और गैर महरम से बात ही नहीं करना चाहते, हत्ता कि अभी तो वो गैर महरम बनी भी नहीं है या बना भी नहीं है क्योंकि ये इतने छोटे हैं अभी तो बालिग ही नहीं हुए, तो अगला जो है वो अभी गैर महरम के डेफिनेशन भी नहीं आया क्योंकि बच्चा ही अभी नाबालिग है। लेकिन पहले से ही जो है वो चेहरे को देख नहीं सकते, देखना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये औलाद की तरबियत इसको कहते हैं, और जाहिर है इसमें सबसे अहम चीज जो है वो अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला से दुआ करना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला औलाद को तौफीक भी देते हैं और आपकी तरबियत का फिर उसके ऊपर असर भी होता है। अच्छा, तो दुनिया की ज्यारत जो है ना वो तो दुनिया में जो होती है उसको दुनिया की ज्यारत कहा जाएगा, और जो मेराज में तो नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से बाहर निकल गए थे ना, ठीक है। अब सवाल ये रहता है कि जब आयत कुरान ला तुदरकुहुल अबसार से ये मालूम हुआ कि इंसान को अल्लाह ताला की रुयत हो ही नहीं सकती तो फिर कयामत में कैसे होगी, तो इसका जवाब खुला हुआ ये है कि आयत कुरान के ये मानी नहीं कि इंसान के लिए हक तआला की रुयत व जियारत नामुमकिन है, बल्कि मानी आयत के ये हैं कि इंसानी निगाह उसकी जात का अहाता नहीं कर सकती, ठीक है। ला तुदरकुहुल अबसार,
बिल्कुल
इदराक का लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल किया है ना, ठीक है। तो अब जिसको इदराक के लफ्ज के तफसीली मानी नहीं पता होंगे तो वो तो यही समझेगा कि नामुमकिन है, ठीक है। तो वो तो फिर इल्म वाले को पता है ना, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया ज्यादा, तो उसको पता है कि भाई यहाँ पे इदराक का मतलब जो है ना वो इहाता करना है, ठीक है। तो इहाता नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जात गैर महदूद और इंसान की नजर महदूद है। कयामत में भी जो जियारत होगी वो ऐसी इसी तरह होगी कि नजर इहाता नहीं कर सकी, जैसे पीछे आपको चांद के मामले में समझाया था ना कि देखेंगे तो लेकिन इहाता नहीं कर सकेंगे, और दुनिया में इंसान और उसकी नजर में इतनी कुवत नहीं जो इस तरह की रोयत को भी बर्दाश्त कर सके, इसलिए दुनिया में रोयत मुतलकन नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती रोयत, और आखिरत में कुव्वत पैदा हो जाएगी तो रोयत व जियारत हो सकेगी मगर नजर में जाते हक का इहाता उस वक्त भी नहीं हो सकेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई 5000 वॉट्स का बल्ब जो है ना वो आपके सामने अगर आ जाए तो आपकी, वो कहते हैं ना आंखें चुंधिया गई, आंखें चुंधिया नहीं जाएंगी बल्कि आपकी शायद आंखें जो है ना वो जल जाए, खत्म हो जाए आपकी आंखें, इतना बड़ा बल्ब अगर आपके सामने आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी आंख में इतनी इस्तेदाद ही नहीं है कि आप ऐसे बल्ब को देख सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आंख में कुछ इस्तेदाद पैदा कर दी जाए, कुछ डाल दिया जाए उसके अंदर, उसको जो है वो कुछ मिक्स मिक्स कर करके जो है ना वो कोई ऐसा पावरफुल आंख बना दिया जाए कि अब वो जो है ना वो उस बल्ब को देख सकती है, लेकिन वो बल्ब है इतना बड़ा कि पूरा का पूरा आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम आप उसकी डायरेक्शन में देख जरूर सकते हैं, पहले आप उसकी डायरेक्शन में देख ही नहीं सकते, अब आप देख सकते हैं। तो यही फर्क हो गया दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में कि बस इस्तेदाद पैदा होगी उस डायरेक्शन में देखने की, ठीक है। पूरा आप उसको अल्लाह ताला को उस वक्त भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो दूसरी सिफत हफ्ता आला की इस आयत में यह बयान फरमाई कि उसकी नजर सारी कायनात पर मुहित है, दुनिया का कोई जर्रा उसकी नजर से छुपा हुआ नहीं है, ये इल्म मुतलक और इहात इल्मी भी हक तआला शानहु की ही खसूसियत है, उसके सिवा किसी मखलूक को तमाम अशियाए कायनात और जर्रा जर्रा का इल्म ना कभी हासिल हुआ ना हो सकता है क्योंकि वो मखसूस सिफत है रब्बुल इज्जत जल्ल शानहु की, ठीक है। तो जैसे पीछे भी सूरह अनाम के आयात में अल्लाह ताला के इल्म मुहीत के बारे में बात हुई थी और अल्लाह ताला की कामिल कुदरत के बारे में बात हुई थी, उसी तरह यहाँ पर भी यही है कि ऐसा इल्म जो है ना जो कि हर एक का इहाता कर ले ये किसी और के पास नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के, ठीक है। हमें भी जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम जो है वो अपने पीरों को अपने बुजुर्गों को बस ये सोचते रहें कि उनको सब पता है, ठीक है। उनको सब पता नहीं है। ये सब पता जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह को है। आलिमुल गैब व शहादा, ये सिर्फ अल्लाह है, ठीक है ना। पीर फकीर तो क्या अल्लाह क्या पहुंचेंगे इस मकाम तक, अल्लाह के जो महबूब महबूब है कुल जहान जो थे ना नबी अलैहिस्सलाम, वो आलिमुल गैब नहीं। यानी हर गैब और शहाद, जो जो चीजें जाहिर है वो भी पता होना और जो चीजें छुपी हैं वो भी पता होना, ये तो नबी अलैहिस्सलाम को हासिल नहीं, ठीक है ना। तो किसी पीर फकीर को कहाँ से हासिल हो जाएगा, या किसी पीर फकीर से मुराद यहाँ पे ये नहीं, हम कोई डेरोगेटरी तरीके से नहीं बोल रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली कामिल, उसको कहाँ से हासिल हो जाएगा। या जब नबी कामिल को हासिल ना हो तो वली कामिल को कैसे हासिल हो सकता, ठीक है ना। हमें इस तरह की कोशिशें करनी ही नहीं चाहिए। ये लोग कोशिशें करते हैं ना कि पीर साहब को किसी तरीके से आलम गैब मान लिया जाए, ये कोशिशें नहीं करनी चाहिए। हमें उनसे मोहब्बत की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। बल्कि हमें कोई यानी वो सारे काम करने चाहिए जिनसे कि अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। ये नहीं करना चाहिए कि पहले हम उनको आलम गैब डिक्लेयर करें फिर उसके बाद हम उनसे मोहब्बत करें। और जो बेचारा किसी गलती कोताही की वजह से आलम गैब ना बन सका हमारी निगाहों में, तो अब हम उससे नफरत कर रहे हैं, अब हम उसको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि वो आलिमुल गैब बेचारा इतना इतना क्वालिफाई नहीं कर सका आलिमुल गैब वाले मुकाम तक। तो इस वजह से अब उसको बुरा भला कहेंगे, उसको नफरत करेंगे, उसकी उससे बदगुमान हो जाएंगे। भाई क्यों यार, भाई आलिमुल गैब अल्लाह है ना, बस काफी है, अल्लाह ताला काफी है। अब आप हर एक को आलिमुल गैब बनाने की कोशिश ना क्या करें ना। असल में मसला हमारा है ना कि हम किसी से मोहब्बत ही नहीं करते जब तक वो आलिमुल गैब ना बन जाए, और जो आलिमुल गैब है उससे हमने वैसी मोहब्बत नहीं करनी। ये अजीब मामला हमारा, जो आलिमुल गैब है उससे तो मोहब्बत करनी नहीं है, यानी अल्लाह अल्लाह से तो मोहब्बत करनी नहीं है। और जो आलिमुल गैब नहीं है उनको हम इस चक्कर में लगे रहते हैं कि वो किसी तरीके से आलिमुल गैब बन जाए और फिर हम उनसे मोहब्बत करेंगे, और वो बेचारे बन ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बेचारे हैं, नाकस है, इंसान है खाली, ठीक है। तो ये इस मखमसे इसमें शैतान ने हमें डाल दिया है, और हम इसी चक्कर में अपनी जिंदगी जाया कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अपने सरी मदा फरमाए, बात की समझ और उसकी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।